दूसरा इतिहास अध्याय 32। अध्याय 32 में हम पढ़ते हैं पद 1 से लेकर 3 तक। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनके अपने लाभ के लिए लेना चाहा। ये देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है, हिजकिया ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ ये सम्मति की कि नगर के बाहर के स्रोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। उसने कहा, वे क्यों यहां आकर पानी पीने पाए? चलो हम सारे पानी के स्रोतों को बंद कर दें, ताकि उन्हें यरूशलेम नगर के बाहर पानी का स्रोत पता न चले। इसलिए उन्होंने यरूशलेम नगर के बाहर जाकर पानी के सारे स्रोत बंद कर दिए। अध्याय 32 पद 6 से लेकर 8 तक। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और ये कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ, हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिया की बातों पर भरोसा किए रहे। हिजकिया ने लोगों को सड़कों पर जमा किया और कहा, मत डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, जितने उनकी ओर है उससे अधिक हमारी ओर है। अरामियों के पास लगभग 185,000 सैनिक थे, और यहां राजा कहता है, मत डरो, चिंता मत करो, जितने उनकी ओर है उससे अधिक हमारी ओर है। कल्पना करें कि पहाड़ पर 185,000 लोग कैसे लगते होंगे। ये बड़ी भीड़ थी। मत डरो, ना चिंता करो, उनसे ज्यादा हमारी ओर है, क्योंकि उनकी ओर तो मनुष्य है, परंतु हमारी ओर परमेश्वर यहोवा है। ये हमें जानना चाहिए। रोमियो 8:31 पद। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जितना शत्रु के पास है उससे अधिक योग्यता हमारे पास है। पहला यूहन्ना 4:14। क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपको ना तो कभी भयभीत होना और ना ही घबराना चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति और चेतना का आभास सदा होते रहना चाहिए। उनकी ओर मनुष्यों का साथ है, पर हमारी ओर परमेश्वर यहोवा का साथ है। इसलिए लोगों ने कहा, हमारी ओर यहोवा है। उन्होंने हिजकिया के शब्दों पर विश्वास किया। ये अति सुंदर बात है। सन्हेरीब ने उन्हें यरूशलेम को भेजा। वो स्वयं लाकिश में युद्ध कर रहा था। उसने धमकी भरे पत्र के साथ संदेशवाहक हिजकिया के पास भेजे, जिसमें लिखा था, स्वयं समर्पण करो या मिटने के लिए तैयार हो जाओ। उसने आगे लिखा, राजा हिजकिया की बातों पर विश्वास मत करो जो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। आरामियों का ईश्वर कहाँ है? उन राज्यों के ईश्वर कहाँ हैं जिन्हें हमने नष्ट कर दिया है? किसी भी राज्य का ईश्वर उन्हें हमारे हाथों से बचा नहीं सका है। ये पत्र प्रभु के विरुद्ध निंदा करने वाला पत्र था। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए हिजकिया उन्हें प्रोत्साहित करता था। ये संदेशवाहक दीवार पर खड़े होकर लोगों से इब्रानी में बात कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, हिजकिया की बातों पर विश्वास मत करो, समर्पण करो, अपने आप को हमें सौंप दो, क्योंकि यदि हम सेना के साथ आएंगे तो तुम्हें मिटा डालेंगे। इस तरह वे उन्हें धमकी दे रहे थे, हिजकिया तुम्हें ये कहकर चलने ना पाए, यहोवा पर भरोसा करो। परमेश्वर का वचन हिजकिया के पास यशिया के द्वारा पहुंचा कि प्रभु में स्थिर रहो, प्रभु में भरोसा रख, वही छुड़ाएगा। परमेश्वर का दूत अशुरों की छावनी में से होकर गया और एक रात में 185,000 सैनिकों को मार डाला। इसराइली जब सुबह उठे तो देखा कि भूमि मुर्दों से भरी हुई है। जो बच गए वे राजा सन्हरीब के साथ अशूर को भाग गए। जब वो अशूर को लौटा तब वो अपने देवता के मंदिर में गया और उसके दो पुत्रों ने उसे मार डाला। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को देखा। जब हम यशया पढ़ेंगे, यशया परमेश्वर की इस विजय के बारे में और जानकारी देता है जो उन्होंने अशूरों पर पाई, क्योंकि उन्होंने हिजकिया के कहने के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा किया था। अध्याय 32 पद 21 हमें सारांश में दर्शाता है कि उसका क्या हुआ। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों का नाश किया और वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वो अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। अध्याय 32 पद 24 और 25। उन दिनों हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें कर उसके लिए एक चमत्कार दिखाया, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। अब हिजकिया रोगग्रस्त हो गया था। यशया उसके पास आकर कहने लगा, अपने घर को व्यवस्थित कर क्योंकि तू मर ही जाएगा, जीवित ना रहेगा। और हिजकिया ने अपना मुंह दीवार की ओर छुपा लिया और प्रार्थना करना आरंभ कर दी। वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा। यशया हमें अपनी पुस्तक में हिजकिया की प्रार्थना के बारे में बताता है। स्वाभाविक तौर पर यही उचित समय है कि जब हम इतिहास के अंतिम अध्यायों को पढ़ते हैं तब हम साथ साथ यशया और यरमिया की भविष्यवाणियां भी पढ़ें। परंतु यशया हमें बताता है कि वो पूरी रात परमेश्वर के सम्मुख दीवार की ओर मुंह करके रोया और परमेश्वर का वचन यशया के पास पहुंचा। वापस जाकर राजा से कह कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। प्रभु ने उसकी आयु बढ़ा दी, परंतु ये दुखदायी हुआ। हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की एक सीधी इच्छा होती है और दूसरी मांगी हुई इच्छा होती है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कुछ बातों को होने देता है जो आवश्यक नहीं कि हमारे जीवन के लिए उसकी सीधी योजना या उद्देश्य हो। परंतु यदि आप कुछ ऐसी बात पर जोर डाल रहे हो, रो रहे हो, हट कर रहे हो, तो परमेश्वर अनुमति दे देता है। बिलाम के विषय में जब बालाक राजा ने उसे भेजा और कहा, मैं चाहता हूं कि तू आकर इन लोगों को जो देश में घुसे आते हैं शाप दे। बिलाम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, तू राजा के पास मत जाना, तू उन्हें शाप नहीं देना, क्योंकि वे आशीषित हैं, वे मेरे लोग हैं। इसलिए बिलाम ने वापस संदेश भेजा और राजा से कहा, क्षमा करे राजा, मैं नहीं जा सकता, मैं उन्हें शाप नहीं दे सकता, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं, वे परमेश्वर से आशीषित हैं। फिर बालाक ने बहुत उपहारों के साथ संदेशवाहक भेजे और कहलवाया, राजा चाहता है कि तुम आकर उन लोगों के प्रति राजा को सलाह दो। बिलाम ने उन बड़े उपहारों को देखा जो उसे मात्र सलाह देने के बदले दिया जा रहा था, और इस बार मुझे निश्चय है उसने प्रार्थना की होगी, परमेश्वर कृपया मुझे जाने दे, कृपया कृपया, क्योंकि वो उन उपहारों को देकर ललचा गया था। इसलिए प्रभु ने कहा, ठीक है जाओ। ये वही मनुष्य है जो परमेश्वर के सम्मुख सहायता के लिए प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने कहा, जा, परंतु सावधान रहना, जो कुछ मैंने तुझे बताया है उससे अधिक कुछ न कहना, जैसा मैंने तेरे मुंह में डाला है वही कहना। इसलिए बिलाम अपने गधे पर बैठकर चला। उसके मन में संभवित चीजें नाच रही थी जो राजा के उपहारों से अपने लिए खरीद सकता था। अचानक गधी ने अपने मार्ग बदल दिया। उसने गधी को पीटा और मार्ग पर वापस ले आया। थोड़ी देर में गधी एक और पहाड़ी से इतना सट गई कि बिलाम के पैर में चोट लग गई। उसने फिर से गधी को पीटा। थोड़ा आगे चलने के बाद गधी जमीन पर बैठ गई और आगे बढ़ना ना चाहा। उसने फिर गधी को पीटा। इस बार हद हो गई तो गधी ने पीछे मुड़कर कहा, क्या तीन बार यूं मुझे पीटना उचित है? क्या जब से तूने मुझे सेवा में रखा है मैं वफादार नहीं रही हूं? बिलाम पागल सा हो गया। उसने गधी को उत्तर दिया, तूने अपने प्राण जोखिम में डाले हैं, मैं ठीक तुझे पीट रहा हूं। हटीले जानवर, यदि मेरे पास बेलचा होता तो मैं तुझे मार डालता। तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने परमेश्वर के दूत को तलवार खींचे हुए खड़े देखा। दूत ने कहा, भला हो कि तू गधी का धन्यवाद करे, यदि वो तेरे साथ ना होती तो मैंने तेरे सिर काट दिया होता। बिलाम ने कहा, मैं लौट जाऊंगा, ठीक है, मैं लौट जाता हूं। परंतु दूत ने कहा, नहीं, तू इतनी दूर आ गया है, तू जा। परंतु परमेश्वर ने अपनी सीधी इच्छा तुझे बताई है, उसके विरुद्ध मत जाना। परंतु लालच के कारण उसने जाना चाहा और परमेश्वर ने उसे जाने दिया। यहां हिजकिया को देखें। हम यहां प्रार्थना करने और परमेश्वर के निर्णय को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं, और इस दृश्य में परमेश्वर ने हिजकिया के जीवन को कुछ समय के लिए बढ़ने की आज्ञा दी। परंतु ये कष्टपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान जो राजा बहुत भला था और जिसने परमेश्वर के लोगों की बहुत भलाई की थी, वो घमंड से भर गया। उसके जीवन के अंतिम वर्ष भिन्न थे। वो परमेश्वर का नम्र सेवक नहीं रह गया था, क्योंकि परमेश्वर ने राज्य को समृद्ध करना आरंभ कर दिया था। सन्हेरीब के नष्ट किए जाने के बाद प्रत्येक राजा उसको उपहार और भेंट भेजने लगे थे, क्योंकि अब तक अशूर सबको नष्ट करते रहे थे। अब अशूर का भय उन पर से जाता रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने हिजकिया के सम्मुख उनको पराजित किया था। सारे राजा उसको भेंट भेजा करते थे और वो धनी मनुष्य हो गया था। अब वो घमंड से भर गया था और उसकी आंखें धन पर लगी रहती थी। ये दुखदाई इसलिए भी है कि इस वृद्ध अवस्था में उसको मनशे नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूरे इसराइल में सबसे दुष्ट राजा था। इसलिए उसके और देश के लिए अच्छा होता यदि वो रोगी अवस्था में मर जाता, परंतु वो प्रार्थना और आग्रह करता था कि परमेश्वर उसे चंगा करे। यदि प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर का मन बदल सको तो वो सदा आपकी बुराई के लिए ही होगा। यदि आप जोर डालो, परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर अपनी करुणामय स्वभाव से आपकी इच्छा पूरी होने की अनुमति दे दे, तो वो विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। उत्तम तो ये है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। सबसे अच्छी प्रार्थना तो ये होगी, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके लिए उत्तम क्या है। आप नहीं जानते कि आपके मित्र के लिए क्या उत्तम है। बहुत बार जिन चीजों के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख रोते रहते हैं, जोर देते हैं, उपवास और प्रार्थना करते हैं कि वे बात हमारी पूरी हो जाए, हमें नहीं ज्ञात होता कि वही बात हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, जो हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकती है। हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होगी कि परमेश्वर हमारी ऐसी प्रार्थना का उत्तर हां में दे दे। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसी प्रार्थना एक आत्मिक मुहावरा है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो यीशु इस आत्मिक मुहावरे का खातावार है, क्योंकि उसने प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हिजकिया ने पूरी रात प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ा देता हूं, परंतु वो पहले जैसा नहीं रहा। अशुरों पर विजय पाने के बाद और बहुत संपत्ति आने के बाद उसका मन घमंड से भर गया। अध्याय 32 पद 27 से लेकर 30 तक। और हिजकिया को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाक मधु और टटका तेल के लिए भंडार, और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनवाई। और उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही धन दिया था। उसी हिजकिया ने गीहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पटाकर उस नदी के नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम आलंग को सीधा पहुंचाया, और हिजकिया अपने सब कामों में कृतार्थ होता था। जब वे सैनहरीब के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने मजबूत चट्टानों में गीहोन सोते की सुरंग 1700 फीट खोदी। कुछ लोगों ने शिलोम के फुकरे से और कुछ लोगों ने गीहोन के झरने से सुरंग खोदना आरंभ किया। उन दिनों में ये एक यांत्रिक परियोजना थी, क्योंकि तब आज की तरह मशीनें और औजार नहीं होते थे। उन लोगों ने मजबूत चट्टानों में सुराख किया या नहीं किए, वे हथौड़े आदि औजारों से काटते थे। मजबूत चट्टान में 1700 फीट तक वे गीहोन के सोते का पानी शहर के दीवार के अंदर ले आए, क्योंकि वे घेराव की आशा कर रहे थे। यरूशलेम के भीतर स्वच्छ पानी की आवश्यकता थी। हम कई बार इस सुरंग से होकर गुजरे हैं। देखने में ये काफी रोचक है। जब आप सुरंग के मध्य में पहुंचते हैं तो वहां कई मोड़ हैं, क्योंकि वे दूसरे मनुष्य के तोड़ने खोदने की आवाज पर चलकर दूसरी तरफ से राह पकड़ते थे। हम देख सकते हैं उन्होंने एक दूसरे को कैसे ढूंढा और अंत में जाकर कहां मिल पाए थे। ये एक कठिन काम रहा होगा, इतनी लंबी खुदाई बिना आधुनिक यंत्रों के करना। कहीं कहीं सुरंग की ऊंचाई केवल 4 फुट है। ये बहुत कठिन कार्य था, पर यह हिजकिया के राज्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। जब वे अपनी बीमारी से चंगा हो गया, तब बाबुल का राजा ने सुना कि वो चंगा हो गया है, और उसने उसे बड़े से उपहार भेजकर उसकी बीमारी से चंगाई पर बधाई भेजी। हिजकिया ने उन्हें अपनी सब धन संपत्ति दिखाई। ये कुछ और नहीं परंतु उसका घमंड था। इसलिए नबी ने आकर कहा, ये लोग कौन है? उसने कहा, ये तो बाबुल से आए हैं। उसने पूछा, तूने इन्हें क्या दिखाया? सब कुछ जो मेरे पास है। उसने कहा, ये तेरी मूर्खता है, क्योंकि ये वापस आएंगे और सबको बंधुआ बनाकर बाबुल ले जाएंगे। इस तरह बाबुल में बंधुआ होकर जाने की भविष्यवाणी हिजकिया के समय में हुई थी, परंतु अगले कुछ वर्षों ऐसा नहीं हुआ, अर्थात जब तक हिजकिया राजा था। हिजकिया मर गया होता तो अच्छा था। इसी प्रकार कुछ लोग सोचते हैं वे परमेश्वर से अधिक जानते हैं।